दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में 2,00,000 करोड़ रूपये के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढ़ाने की 5 योजनाओं और पहल के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये। विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर 40% से घटाकर 35% की गई। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समग्र विकास के लिए सरकार पूर्वोदय योजना लागू करेगी। मौजूदा वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रूपये की विशेष वित्तीय सहायता। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रूपये के प्रावधान की घोषणा की। अगले 2 वर्ष में प्रमाणन और ब्रांडिंग समर्थित प्राकृतिक खेती में 1 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा। सरकार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। महिला नीति विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर 3,00,000 करोड़ रूपये से अधिक का आवंटन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10,00,000 करोड़ रूपये का निवेश करेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमती सीतारामन ने 7वीं बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए 2 घोषणाएं की। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners.
नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। 3,00,000 रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 से 7,00,000 रूपये तक की आय पर 5%, 7 से 10,00,000 रूपये तक 10%, 10 से 12,00,000 रूपये तक 15%, 12 से 15,00,000 रूपये तक 20% और 15,00,000 रूपये से अधिक आय पर 30% तक कर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसे नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रूपये तक की बचत हो सकेगी।
In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास कराधान को सरल बनाने का है। हमने पिछले 5 वर्ष में अनेक उपाय किए हैं जिसमें कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूट और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारंभ करना शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में 58% कॉरपोरेट कर सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए सब्सिडी के रूप में 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी योजना नियोक्ताओं पर केंद्रित होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में गया में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान की जाएगी। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat.
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रूपये की राशि की व्यवस्था की जाएगी। सरकार आंध्र प्रदेश और वहां के किसानों की जीवन रेखा पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के वास्ते विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर 40% से घटाकर 35% की गई है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रूपये के प्रावधान की घोषणा की है। किसान अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल है। 10,000 आवश्यकता आधारित संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि महिला नीत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर 3,00,000 करोड़ रूपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
फॉर प्रमोटिंग विमेन लेड डेवलपमेंट द बजट कैरीज एन एलोकेशन ऑफ मोर देन 3,00,000 करोड़ for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10,00,000 करोड़ रूपये का निवेश करेगी। बजट पेश किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने दिनभर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने पर वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रति सदन में रखी। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। उसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं।
साइबर अपराधियों से सावधान, शेयर मार्केट से तुरंत पैसे बढ़ाने, घर बैठे पैसे कमाने जैसे लालच देकर या फिर नकली पुलिस CBI कस्टम अधिकारी बनकर सिम या बिजली बंद होने की धमकी देकर या फिर अनजाने नंबरों से वीडियो कॉल करके साइबर अपराधी आपको शिकार बनाते हैं। सतर्क रहें, शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि ये बजट हर वर्ग को नई ताकत देने वाला है। इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। ये बजट गांव, ग्रामीण और युवाओं का बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बजट समृद्ध और स्वावलंबी विकसित भारत की दिशा में अगला कदम है। श्री सिंह ने रक्षा मंत्रालय को 6,21,940 करोड़ रूपये से अधिक के सर्वाधिक आवंटन के लिए वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्रालय के लिए बजट आवंटन कुल बजट का 12.9% है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजारापू राम मोहन नायडू ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश और पोलावरम परियोजना के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों की घोषणा की गई है।
जो इश्यूज फेस कर रहे हैं आज, रोजगार की बात हो या अपने सपने साकार करने की बात हो, उन सबको एक बल देने का काम ये बजट में उन्होंने किया है। बहुत सारा स्ट्रेस जॉब क्रिएशन पे, स्किलिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह के बहुत सारी चीजें जो आम आदमी को, आम नौजवान को रोजगार की तरफ आगे बढ़ाता है, उन सब चीजों के बारे में इन्होंने ध्यान दिया है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय बजट को सभी नागरिकों के सपनों का बजट करार दिया। कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आय असमानता दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बजट में मनरेगा का कोई उल्लेख नहीं है। उद्योगों ने केंद्रीय बजट 2024-2025 का स्वागत किया है। नई दिल्ली में मीडिया से वर्चुअली बात करते हुए फिक्की के अध्यक्ष अनिश शाह ने बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट विकासोन्मुख है, जो युवाओं, महिलाओं और किसानों सहित कई क्षेत्रों पर केंद्रित है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने केंद्रीय बजट को सभी बिंदुओं का संतुलित बजट बताया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्री सूद ने कहा कि बजट विकास के अनुरूप है और यह विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। बजट में पूंजीगत लाभ और ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर कर बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद शेयर बाजारों में आज काफी गिरावट आई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 80,000 पर आ गया, जबकि निफ्टी में भी 409 अंक की गिरावट आई। अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूपया रिकॉर्ड 83 के निचले स्तर पर आ गया। तमिलनाडु सरकार ने सीमावर्ती जिलों में निपाह वायरस की निगरानी और जांच बढ़ा दी है। सीमावर्ती जिले नीलगिरी में आज स्क्रीनिंग और निगरानी शुरू हो गई है। केरल से आने वाले पर्यटकों की संक्रमण की जांच की जा रही है। महिला एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप ए के मैच में आज भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। मैच श्रीलंका के दामुला में शाम 7 बजे से शुरू होगा। आज के पहले मैच में पाकिस्तान का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में 2,00,000 करोड़ रूपये के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढ़ाने की 5 योजनाओं और पहल के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये। विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर 40% से घटाकर 35% की गई। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समग्र विकास के लिए सरकार पूर्वोदय योजना लागू करेगी। मौजूदा वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रूपये की विशेष वित्तीय सहायता। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रूपये के प्रावधान की घोषणा की। अगले 2 वर्ष में प्रमाणन और ब्रांडिंग समर्थित प्राकृतिक खेती में 1 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा और सरकार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।